प्रस्तुत है नाटक खुला आसमान, लेखिका भवानी कौल।
शकुंतला, शकुंतला, अरे शकुंतला कहां मर गई?
जी पिताजी।
जी पिताजी की बच्ची, कब से चिल्ला रहा हूँ शकुंतला शकुंतला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया?
जी पिताजी, मैं रसोई में थी।
रसोई में तुम इस वक्त? विभूति कहाँ है? तुम दोनों का काम बटा हुआ है ना?
जी।
कि सुबह का खाना तुम बनाओगी और शाम को रसोई का काम विभूति संभालेगी?
जी पिताजी।
फिर क्या हुआ, विभूति का काम तुम कर रही हो? विभूति कहाँ है?
पिताजी, वो अभी स्कूल से नहीं लौटी है।
क्या, रात होने जा रही है और विभूति अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई? क्या रात तक बच्चों को पढ़ाना होता है वहां इतनी देर? लगाओ लगाओ फोन लगाओ, जिस स्कूल में वो पढ़ाती है सीधे मैं हेड मिस्ट्रेस से बात करता हूँ, अभी बताता हूँ उन्हें। ये कोई तरीका होता है स्कूल चलाने का? अभी तक घर नहीं आई।
पिताजी, विभूति आ गई।
आ गई? ठीक है ठीक है, भेजो भेजो उसे मेरे पास।
आज क्यों चिल्ला रहे हैं पिताजी? आपको पता है ना, चिल्लाने से आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। सांस फूलने लगती है, हाथ पैर कांपने लगती हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल ले जाने की भी नौबत आ जाती है।
जानता हूँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसके सर पर दो जवान बेटियां हों, वो भी विधवा, वो भला क्या चिंता नहीं करेगा? वैसे भी तुम मेरी सेहत का कितना ख्याल रखती हो, समय पर स्कूल से घर नहीं आती हो और मेरी सेहत की बात कर रही हो तुम। रहने दो, मेरी सेहत की बात फिर कभी मत करना। एक अरसा बीत गया, आज तक किस खानदान राय खानदान पर एक धब्बा तक नहीं लगा है। इसी परंपरा को निभाना चाहता हूं। मुझे इसी बात की चिंता है, मेरे दादा परदादा ने जिस राय खानदान को संभाल कर रखा है उसे मैं भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या क्या दिक्कत क्या है तुझे विभूति? तुम समय पर घर क्यों नहीं आती? तुम्हें नौकरी करने की छूट मिली है, इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अपनी सीमाएं खो दो?
पिताजी, मैं अपनी सीमाएं जानती हूं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
देखो विभूति, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। तुम कहां आती हो कहां जाती हो इसकी पूरी खबर मेरे पास है। आज भी निश्चित तौर पर तुम उस आवारा अरविंद के साथ होगी।
पिताजी, आप बहुत आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, अनावश्यक इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते आप। रही अरविंद की बात, तो अरविंद न आवारा है न बदमाश, वह अपने हर काम में परफेक्ट है, सक्षम है वो।
चाहे तुम कुछ भी कहो, पर इस खानदान की इज्जत पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। इस खानदान में न जाने कितनी विधवाएं हुई हैं, पर किसी ने भी कभी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं की।
पिताजी, मैं तो सोच रही हूँ कोई योग्य वर मिल जाए तो विवाह कर लूँ।
हाँ हाँ, है ना वो तुम्हारा अरविंद योग्य वर। चली जा, भाग जा उसी के पास, मिट्टी में मिला दे बरसों की इज्जत को।
आप किस खानदान की इज्जत की बात करते हैं पिताजी? जब घूर घूर कर हम दोनों बहनों को लड़के देखते हैं तब आपकी इज्जत नहीं जाती, वे हमें छेड़ते हैं तब आपकी इज्जत नहीं जाती। खैर मनाइए पिताजी, हम दोनों बहनें अपने दायरे में हैं।
तुम्हें बहुत बोलना आ गया है विभूति।
इसीलिए तो आपको मिर्ची लगती है, क्योंकि दीदी कभी नहीं बोलती, घूट घूट कर जीती है। 27 साल की छोटी उम्र में उन्होंने जिंदगी से समझौता कर लिया, मगर ऐसा मैं नहीं करूंगी पिताजी, क्योंकि मेरी बच्ची है और मुझे उसी की फिक्र है। ईशा बाप के बिना खोई खोई सी रहती है।
हाँ हाँ, ईशा बाप के बिना नहीं रह सकती, या तू पर पुरुष बिना नहीं रह सकती।
क्यों, सच कही तो आग लग गई पिताजी।
देख बेटी, सधवा रहना या विधवा रहना तेरे वश में नहीं है। वो तुम्हारा पति विक्रम शराब पी पी कर जुआ खेलता था, यदि वो जीवित होता तो क्या तुम दूसरा विवाह कर लेती?
क्यों नहीं कर लेती पिताजी, पति अच्छा न हो तो तलाक लेकर स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है।
ये सब नए जमाने के चोंचले हैं विभूति, विकृतियां इस नए समाज की।
आप बहुत पीछे हैं पिताजी।
ओफो, बस भी करो विभूति।
आज मुझे बोलने दो दीदी, आपने जानबूझकर अपना जीवन नर्क बना लिया है, खानदान की ऊंची नाक लेकर आप भी बैठ गई। सबको जीने का हक है दीदी, फिर आपने अपना यह कीमती जीवन क्यों बेकार कर दिया? खुद को आईने में आपने देखा है? 27 साल की उम्र और चेहरे में कैसी उदासी और बुढ़ापे की झलक है। रहने दो दीदी, आप में कोई सुधार नहीं होने वाला।
विभूति, तू तो पिताजी की मजबूरी जानती है। पूरे खानदान में किसी ने दूसरा विवाह नहीं किया, यहाँ तक कि पुरुष ने भी नहीं, फिर औरत जात होकर तू दूसरी शादी की बात करती है।
भला क्यों नहीं दीदी, औरतों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? ईश्वर ने तो औरत और मर्द को अलग अलग नहीं बनाए हैं। वही रक्त, वही श्वास, वही प्राण, दो आंखें, दो कान, दो हाथ पैर, एक नाक, फिर परिवार समाज के लोग अलग क्यों करते हैं औरत और मर्द को?
ओफो, मैं तुम्हारा कहना मानती हूँ विभूति, पर दोनों के शारीरिक ढांचे में काफी अंतर है, इसी के कारण शायद औरत मर्द में अंतर है।
हाँ हाँ दीदी, ये औरत मर्द में अंतर भी इसी पुरुष वर्ग के नियम है, ईश्वर के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं है। दीदी आपने सब स्वीकार कर लिया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी उम्र ही क्या है, मात्र 24 साल की हूँ। चलो मैं अपने बारे में न सोचूं, अपनी छोटी बेटी का तो सोचना ही पड़ेगा ना मुझे, उसे एक बाप की जरूरत है और मुझे भी सहारा चाहिए, एक दोस्त चाहिए।
पर विभूति,
सुन लिया ना, सुन लिया तुमने शकुंतला, सुन ली ना इसकी बात। अरे इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारे जैसी नहीं है।
ठीक कहा पिताजी आपने, मुझे दीदी जैसा बनना भी नहीं है, जो भी तय करना होगा मैं खुद करूंगी, मुझमें निर्णय करने की क्षमता है, मैं अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहती हूँ पिताजी।
ठीक है, अपने तरीके से अपना जीवन जीने की इच्छा है ना तुझे, तो कुलक्षणी है विभूति, जा निकल जा, निकल जा इस घर से, इसी वक्त निकल जा।
चली जाऊंगी पिताजी, एक दिन जरूर चली जाऊंगी आपके घर से।
विभूति, विभूति बात तो सुन। विभूति, विभूति सुन, मेरी बात सुन।
मुझे नहीं सुनना दीदी, आपकी बात भी नहीं सुनना मुझे।
नहीं मेरी बात तो सुन,
मुझे आपकी बात नहीं सुनना है, मैंने कह दिया ना दीदी।
तो पिताजी की कोई बात मत मान, पर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरी बात तो सुन। चला,
नहीं मैं नहीं जाने वाली।
चल उस कमरे में,
मैं नहीं जाऊंगी दीदी, छोड़िए मेरा हाथ, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला, मुझे मालूम है दीदी।
तू मेरी बात
दीदी, नहीं दीदी मैं नहीं जाना चाहती।
चुप बैठ, शांत बैठ, मेरी बात सुन।
हाँ क्या बात है दीदी? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ, मैंने तय कर लिया है दीदी।
ठीक है, तय कर लिया ना तूने? देख देख विभूति, कोई भी कदम उठाने से पहले तू ठंडे मन से, ठंडे दिलो दिमाग से अच्छी तरह सोच ले, समझ ले। देख देख बहन, तेरा एक कदम तेरी रही सही जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
दीदी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, पूरी तैयारी है मेरी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें मेरी। और दीदी मेरा टिफिन तैयार हो गया होगा तो प्लीज लगा दीजिए, मैं स्कूल जा रही हूँ।
अच्छा ठीक है, टिफिन तो तैयार ही है, ये ले टिफिन।
हाँ
देख देख विभूति, हाँ। फिर कह रही हूँ कोई गड़बड़ मत करना, जल्दी घर लौट आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी बहन।
ठीक है दीदी, मैं जल्दी घर लौट आऊंगी बस।
हाँ जल्दी आ जाना। हाँ
हाँ दीदी बिल्कुल जल्दी आऊंगी मैं।
जा
विभूति।
हाँ
क्या बात है, आज तुम बुझी बुझी दिख रही हो, ईशा बिटिया की तबीयत तो ठीक है ना?
वो तो ठीक है अरविंद।
फिर इस तरह तुम ऐसे क्यों लग रही हो?
आगे कुछ न पूछना अरविंद, आज मेरा मन बहुत खराब है, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? देखो अब तुम मुझे मना मत करना विभूति, कहो ना क्या बात है। मैंने इतना दुखी तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम तो हमेशा हंसती रहती हो, खिलखिलाती हो, और आज अचानक क्या हो गया तुम्हें?
अरविंद बात ही कुछ ऐसी है।
कहो ना विभूति कैसी बात है, कहो ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम।
मुझे कसम मत दो अरविंद, बस मैं अपनी बच्ची का अकेलापन नहीं देख सकती, उसका गुमसुम रहना जैसे जैसे मेरे हृदय को भेदता है, एक तीर सी चुभती है।
विभूति क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? भरोसा नहीं है मुझ पर। कितनी बार मैं कहूं तुमसे कि मैं तुम दोनों की देखरेख करूंगा, मेरी जिम्मेदारी हो तुम दोनों। ईशा मेरी बेटी है, मैं अपनाऊंगा उसे। तुम्हें यही डर होगा ना कि मैं ईशा को अपनी बेटी नहीं मान सकूंगा। यदि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो बहुत गलत सोचती हो। सच कहूं तो अभी तक तुम मुझे जान ही नहीं पाई, मेरे अंतर्मन को पहचान नहीं पाई। तुम मुझे चाहती जरूर हो, पर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कहीं कोई शंका है।
तो फिर वादा करो अरविंद कि हम दोनों को अपनाओगे, तुम अपने घर ले जाओगे। एक वादा और करना होगा तुम्हें अरविंद।
वो क्या?
उसे ताउम्र निभाना होगा, तुम दूसरा बच्चा नहीं लोगे।
ये क्या, कितनी बड़ी शर्त रख दी तुमने। ठीक है, तुम्हारे खातिर मैं ये भी सह लूंगा, पर मेरे दो बच्चे होते तो भी मेरे प्यार में कमी नहीं आती विभूति। अब लेकिन तुमने कह दिया है तो ठीक है, ये भी मंजूर है मुझे।
अब मुझे विश्वास हो गया है तुम पर अरविंद, मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। मैं तो बस तुम्हें परखना चाहती थी। सचमुच ईश्वर ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। सचमुच अरविंद, सचमुच में।
अरे विभूति, आ गई तू?
हाँ दीदी।
आज तू वाकई समय पर घर पहुंची है, बहुत अच्छी है तू, बहुत ही अच्छी।
दीदी मैं जाने के लिए घर जल्दी आई हूँ, पिताजी से कह देना फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस घर में, कभी नहीं आऊंगी। दीदी
ये तू क्या कह रही है, क्या कह रही है विभूति?
हाँ दीदी मैं ठीक कह रही हूँ, मैं अरविंद के साथ शादी करने जा रही हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची ईशा, कहाँ है? आज मैं उसे एक नई और खुशहाल दुनिया में लेकर जाऊंगी दीदी, जहाँ वह नया जीवन पाएगी, क्या? खुश रहेगी, अपने पापा के पास जाएगी वो आज।
तू सचमुच जा रही है विभूति?
हाँ दीदी मैं सचमुच में जा रही हूँ, सचमुच में जा रही हूँ आज।
तो जा विभूति, जा, जो हिम्मत आज तक मैं नहीं कर पाई उसे तूने पूरा कर दिखा दिया। तेरी बहुत याद आएगी बहन, बहुत आएगी।
क्या हो रहा है दोनों में?
जी कुछ नहीं पिताजी।
ये क्या बताएगी पिताजी, मैं कहती हूँ मैं अरविंद से शादी करने जा रही हूँ और इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, वापस नहीं आऊंगी।
अरविंद से शादी? दूसरी शादी? कलमुही कुलनाशिनी?
आज आप चाहे कितना भी चिल्ला ले पिताजी, मैं जा रही हूँ, आप अपनी नाक पकड़कर बैठे रहिए, मैं तो जा रही हूँ दीदी, मैं जा रही हूँ दीदी। चल मेरी बच्ची, तू मेरे साथ चल।
रुक जा विभूति, खानदान की इज्जत को इस तरह धज्जियों में मत उड़ा।
मैं चौखट लांघ चुकी हूँ पिताजी, वापस नहीं आ सकती।
उसे जाने दीजिए पिताजी, उसे जाने दीजिए।
क्या तुम भी शकुंतला, तुम? हाँ, कह रही हो?
हाँ मैं कह रही हूँ, मैं भी इसी के पक्ष में हूँ पिताजी। मैं नहीं चाहती कि विभूति भी मेरी तरह पापड़ बड़ी और अचार बनाने में अपने आप को खो दे। मैं कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी दिखती थी, लेकिन अब मेरे चेहरे की झुर्रियां मेरी व्यथा कथा सुनाती है। उसने सीमा तोड़ दी है पिताजी, उसे विदा कर दीजिए, खुले आसमान में उसे घूमने दीजिए, विचरने दीजिए।
हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो बेटी, मैंने क्या कर दिया ही, मेरी बच्ची खोखले उसूलों को पालकर मैं बैठा रहा अपनी इज्जत को लेकर, सिर्फ अपनी इज्जत को लेकर मैंने तुम लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया।
नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए।
लेकिन नहीं, अब मुझे अपनी गलतियों को ठीक करना है मेरी बच्ची, बस अब और नहीं, और दुख नहीं।